ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि केंद्र सरकार देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार प्रयास कर रही है। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन से महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिला है। राष्ट्रपति ने कहा कि अधिकांश नवनिर्मित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों में MBBS पाठ्यक्रम शुरू हो गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार के प्रयासों से आने वाले वर्षों में बड़े पैमाने पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। राष्ट्रपति ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में महिला रोगियों के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर कम शोध हुआ है। उन्होंने चिकित्सा जगत से जुड़े सभी लोगों, विशेष रूप से शोधकर्ताओं से महिलाओं के स्वास्थ्य पर शोध करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे बीमारियों के बारे में समझ बढ़ेगी और सार्वजनिक स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में राष्ट्रपति ने लोगों और डॉक्टरों से अस्पताल कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार न करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोविड महामारी के दौरान डॉक्टरों और नर्सों की भूमिका की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने जीवन बचाने के लिए समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया है और देश हमेशा उनका आभारी रहेगा। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस बात पर बल दिया कि चिकित्सा शिक्षा के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने विद्यार्थियों को देश में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को बेहतर बनाने की दिशा में अपनी प्रतिभा, कौशल और ज्ञान को कुशलतापूर्वक लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटों के चुनाव के लिए प्रचार कार्य चरम पर है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता जनसभाएं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा ने राज्य के विकास के लिए काम किया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज हरियाणा विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की। श्री गांधी ने अंबाला के नारायणगढ़ में एक जनसभा में कहा कि हरियाणा में मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। राज्य में एक ही चरण में 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम पर बातचीत की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय तनाव को रोकना और सभी बंधकों को सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनीस भारत की 4 दिन की यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। डॉक्टर होलनीस कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगे। उनकी इस यात्रा के दौरान कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाने की आशा है, जिससे भारत और जमैका के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्रालय के राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर भी उपस्थित थे। क्रूज भारत मिशन का उद्देश्य क्रूज पर्यटन को वैश्विक हब बनाने की भारत की परिकल्पना को साकार करना और उसे अग्रणी वैश्विक क्रूज गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना है। इस अवसर पर श्री सोनोवाल ने कहा कि इस मिशन का उद्देश्य 2029 तक क्रूज यात्री यातायात को दोगुना कर देश के क्रूज पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था की विशाल क्षमताओं का दोहन करने के लिए प्रतिबद्ध है। जाने माने फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार अगले महीने 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। भारत ने सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। भूटान के थिम्पू में आज खेले गए फाइनल में उसने बांग्लादेश को 2-0 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।